आप हैं SBS हिंदी के साथ।
क्वाड बैठक में शामिल हो प्रधानमंत्री अल्बनीजी की टोक्यो से वापसी। अमेरिका के टेक्सास में हुए सामूहिक गोलीबारी के हमले के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने किया देश को संबोधित। और आईपीएल के प्लेऑफ्स मुकाबले में राजस्थान को हरा, गुजरात ने बनाई फाइनल में जगह। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका में एक प्राथमिक विद्यालय में घटे सामूहिक शूटिंग के मामले के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वक्त आ गया है कि बंदूक कानूनों को तय किया जाए। आपको बता दें कि दक्षिण टेक्सास के योवल्डी शहर के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में हुई गोलीबारी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जिसमें 18 बच्चे और 3 वयस्क शामिल हैं। इसी के साथ बंदूकधारी की पहचान एक स्थानीय निवासी और स्कूल के 18 वर्षीय पूर्व छात्र के रूप में की गई है, जिसका नाम सल्वाडोर रोमस बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गोली भी मार दी थी। चिंता की बात यह है कि लगभग 15 दिन पहले भी अमेरिका में एक सामूहिक गोलीबारी का मामला सामने आया था, जब न्यूयॉर्क के बफेलो में एक सुपरमार्केट में 10 अश्वेत लोगों की मौत हो गई थी। एक भावनात्मक संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा,
Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone to have the courage to deal with it and stand up to the lobbies? It's time to turn this pain into action for every parent, for every citizen in this country. We have to make it clear to every elected official in this country. It's time to act.
इसी हादसे पर टेक्सास के गवर्नर ग्रेग अबॉट ने कहा कि अपराध समझ से बाहर है।
When parents drop their kids off at school, they have every expectation to know that they're going to be able to pick their child up when that school day ends. And there are families who are in mourning right now, and the state of Texas is in mourning with them for the reality that these parents are not going to be able to pick up their children.
प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली भूमिका में क्वाड गठबंधन की बैठक में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी टोक्यो से वापस आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका, जापान और भारत के नेताओं के साथ राजनयिक गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए विश्व मंच पर अपनी शुरुआत की। इस छोटी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने प्रशांत देशों को और अधिक विदेशी सहायता देने का वादा किया। इसी के साथ इस बात पर भी जोर दिया कि ऑस्ट्रेलिया जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करेगा। टोक्यो से विदा लेने के कुछ समय पहले हवाई अड्डे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा,
There are many consistencies in Australia's national security positions, but there are some differences with the former Australian government, particularly when it comes to climate change. And the new government that I lead's position was welcomed by the leaders of the United States, Japan and India, and I look forward to going forward and building those relationships.
नए फेडरल कोषाध्यक्ष जिम चालमर्स ने देश के बजट पर चर्चा करने के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर और ऑस्ट्रेलिया के वित्तीय नियामकों के प्रमुखों से मुलाकात की। आपको बता दें कि देश के दोनों प्रमुख दलों ने पिछले शनिवार के फेडरल चुनाव में आरबीए के संचालन की समीक्षा करने का वादा किया था, जिसमें मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को लक्षित करना और केंद्रीय बैंक के बोर्ड के ढांचे को देखना है। गौर करने वाली बात यह है कि लेबर पार्टी बढ़ती मुद्रास्फीति और ब्याज दरें, गिरती मजदूरी दर और $1 ट्रिलियन के कर्ज सहित कई बेहद कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करते देश की बागडोर संभाल रही है। जिम चालमर्स ने बैठकों से पहले चैनल 7 को बताया कि लेबर पार्टी पहले की सरकार की तुलना में अधिक जिम्मेदारी से बजट का प्रबंधन करेगी।
But I want to be upfront with you, Koshy, and with all your viewers. You know, this is a generational debt that we're inheriting from our predecessors, $1 trillion in debt. In our view, nowhere near enough to show for it. So this is a hard task ahead of us, a long task ahead of us. It will take generations to pay that debt down. But our job is to make sure that there's a generational dividend for all of that debt.
एक वरिष्ठ लिबरल सांसद ने पुष्टि की है कि उनके सहयोगी पार्टी के अगले नेता के रूप में पूर्व रक्षा मंत्री पीटर डटन को निर्विरोध चुनेंगे। आपको बता दें कि सप्ताह के अंत में पार्टी के बड़े चुनावी नुकसान के बाद न्यू साउथ वेल्स की एमपी सुजन ले के उप नेता बनने की संभावना है। इस बीच पूर्व रक्षा मंत्री पीटर डटन शीर्ष पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन चिंताएं हैं कि वो प्रगतिशील मतदाताओं पर बुरा असर डाल सकते हैं जिन्होंने निर्दलीय ग्रीन्स और लेबर के पक्ष में वोट दिए। क्वींसलैंड लिबरल एमपी और पूर्व गृह मामलों की मंत्री कैरन एंड्रयूज ने एबीसी को बताया कि पार्टी के नए नेताओं का काम मतदाताओं के समर्थन को हासिल करना है।
We need to rebuild right across Australia. Queensland took a hit. Some of the other states took a significant hit. And we need to go back to our values, our principles, look closely at what has happened. But we need to...
देश भर में फ्लू की दर तेजी से बढ़ रही है और स्वास्थ्य अधिकारी लोगों से अपने बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण करवाने की अपील कर रहे हैं। रॉयल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के नेशनल चाइल्ड पोल के नए शोध से पता चलता है कि इस साल सभी ऑस्ट्रेलियाई बच्चों में से केवल आधे बच्चों को ही फ्लू के खिलाफ टीका लगाया जा सका है। कोविड 19 के दो साल के बाद बच्चे अब स्कूल लौट रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू हो रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा की दर में वृद्धि हो गई है। द रॉयल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की डॉक्टर एंथिया रोड्स का कहना है कि छोटे बच्चे फ्लू की चपेट में सबसे ज्यादा आते हैं।
Prior to the COVID pandemic, the flu was the leading cause of admission to hospital in children under 5. So it is those very young children who are more likely to catch the flu and also more likely to get more serious illness and complications, including things like pneumonia, infections of the heart and infections of the brain in some instances.
अब खबरें भारत से। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए हमेशा से हरित ऊर्जा की बात होती रही है और दिल्ली सरकार ने इसी योजना पर कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक बसों को सड़क पर उतारने की तैयारी कर ली है। इस कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईपी एक्सटेंशन बस डिपो में 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक साल के भीतर कुल 2000 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च करने का उद्देश्य लिया है।
आज 150 बसें आई हैं, एक महीने बाद 150 बसें और आ रही हैं, तो लगभग 300 बसें हो जाएंगी। हमारा टारगेट कि एक साल के अंदर लगभग 2000 के करीब बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे होंगी, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो 300 बसेस हैं, 150 आ जाई हैं, 150 एक महीने बाद आएंगी, इसमें 1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। इसमें 150 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं, केंद्र सरकार का इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप ने कोलकाता में डिफेंस कॉन्क्लेव को संबोधित किया और रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि भविष्य के सभी संघर्ष अल्पकालीन युद्ध नहीं होंगे।
As far as the Russia-Ukraine war is concerned, while the jury is still out to draw out relevant lessons, a couple of things which stand out clearly is, first of them is the importance of hard power. And second thing, there is a myth which was being circulated that the era of open conflict is gone, which has, the Russia-Ukraine has shown us that even now the nation states would pursue their national interest by resorting to an open all-out conflict. There was also a myth which was being talked about that all future conflicts will be short-duration wars. The Russia-Ukraine war has been going on for more than 3 months now.
कई देशों में मंकीपॉक्स के मामले बढ़ने के बाद भारत सरकार भी इस बीमारी के लिए सचेत हो गई है। इसी विषय पर तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य के लोगों को इस वायरस के बारे में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लगातार सतर्क किया जा रहा है।
Recently we have come to know of this non-endemic countries, around 10 to 12 countries, there has been a report of monkeypox. No, WHO has given its situation about the situation. Government of India also through NCDC and ICMR has communicated to us what are the initial advisory. So that has been communicated to the all the district collectors and corporation commissioner and the public health authorities. And we are having a regular CME about these kind of diseases.
अब सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 55 रुपये 15 पैसे और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 71 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। आईपीएल में राजस्थान को हरा गुजरात की टीम ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने इनफॉर्म चल रहे इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉस बटलर की मदद से 188 रन बनाए। राजस्थान की तरफ से बटलर ने 89 और कप्तान संजू सैमसन ने 47 रन की पारी खेली। जवाब में उतरी गुजरात की टीम के सामने एक बड़ा लक्ष्य था, लेकिन पूरी पारी में ऐसा एक वक्त भी नहीं लगा कि गुजरात की टीम ये मैच हार सकती है। गुजरात की पारी के नायक रहे कप्तान हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर, जिन्होंने 40 और 68 रन की पारी खेली। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। बात करते हैं कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां दिन में मौसम साफ रहेगा। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में कल दिन में बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में कल हल्की बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद देश की राजधानी कैनबरा की, जहां कल आसमान में आंशिक बादल रहेंगे। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं सिडनी की, जहां कल आसमान बादलों से घिरा रहेगा। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में कल सुबह हल्की बारिश हो सकती है। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में कल आसमान साफ रहेगा। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। यहाँ का तापमान रहेगा अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको बता देते हैं www.sbs.com.au/hindi।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।